चर्चा का विषय है।
ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और सुरक्षा परिदृश्य पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय मेस्टर्न और सामरिक विश्लेषक अतुल अनिजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार विशाल दहिया।
नमस्कार, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ईरान की राजधानी तेहरान और बाकी कई ठिकानों पर इसराइल के लगातार चल रहे सिलसिलेवार हमलों से पश्चिम एशिया में जारी संकट और गहरा हो गया है। आज पश्चिम एशिया के इस संकट पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। आइए उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले हैं हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मेस्टर्न, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ अतुल अनिजा भी जुड़े हुए हैं जो कि स्ट्रेटजिक एनालिस्ट हैं। अनिजा जी, जनरल मेस्टर्न, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद। थैंक यू।
जनरल मेस्टर्न, पहली शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि पूरा जो संकट है इसको अगर मिलिट्री स्ट्रेटजी के नजरिए से देखा जाए तो अभी तक जो पिछले 5 दिन का जो युद्ध रहा है, जो लड़ाई रही है दोनों तरफ से, आप इसको किस तरह से आंकते हैं? स्थिति कितनी चिंताजनक है?
देखिए, स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है दोनों के लिए और पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए भी और उस रीजन के लिए। कारण यह है कि अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक एम शुरू से था, उनका 4 एम तो बहुत क्लियर थे कि रिजीम चेंज। तो रिजीम तो खैर चेंज अभी नहीं हो सकती है, उन्होंने पर रिजीम को डिसलॉज कर दिया या टॉप लीडरशिप को मार दिया है, वो हम सबको पता है। और साथ में 3 मुद्दे और थे, एक तो ये जितनी भी इनकी मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटी है इसको डिस्ट्रॉय करना, दूसरा है ये जितने भी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको डिस्ट्रॉय करना जिससे वो कभी भी परमाणु हथियार ना बना पाए, और चौथा था कि ये जो आपके जितने भी प्रॉक्सीज हैं इनको वीकन करना और पूरे वेस्ट एशिया में इनका होल्ड तकरीबन खत्म हो जाना चाहिए। ईरान का क्या इरादा है या ईरान की क्या स्ट्रेटेजी है? ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। उनकी स्ट्रेटेजी है कि अपनी एक तो रिजीम को होल्ड करके रखना, रिजीम मतलब जो उनका पूरा सिस्टम है जिसमें IRGC और सब कुछ शामिल है। दूसरा, उनका सबसे बड़ा पावर जो है वो है इनकी मिसाइल्स और इनकी ड्रोन सिस्टम, वो सबसे बड़ी पावर है और वही इनको ताकत दे रही है। और दूसरा, पर्शियन गल्फ या मैं बोलूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करके रखना और इस लड़ाई का विस्तार कर देना जो उन्होंने कर दिया है। उन्होंने तमाम गल्फ कंट्रीज के ऊपर फायर किया है और अमेरिकन एम्बेसीज को अटैक कर रहे हैं, कई रिहायशी इलाकों में फायर कर रहे हैं, जिससे प्रेशर बने इन कंट्रीज के द्वारा, गल्फ कंट्रीज के द्वारा अमेरिका और इसराइल के ऊपर कि वो लड़ाई को जल्दी खत्म करें। अमेरिका क्या चाहता है? लड़ाई जल्दी खत्म हो, और ईरान क्या चाहता है? लड़ाई लंबी चले। लंबी चलने में उसको फायदा है क्योंकि पूरी विश्व में टर्मोइल हो रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई आना जाना नहीं है, ये गैस का और ऑयल का तो प्राइसेस बढ़ गई है, आपको पता है तकरीबन 12-13% पूरे विश्व में प्राइस बढ़ गई है। और अमेरिका अभी तक इनके जो पावर है मिसाइल्स और ड्रोन्स को अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है।
बिल्कुल। जनरल मेस्टर्न, आपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात की, एक बार गहराई से इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। अनेजा जी, शुरुआत में करना चाहूंगा जो पहला जिसे मोटिव जिसे कहा जाए रजीम चेंज की बात जो की जनरल मेस्टर्न ने और अमेरिका की तरफ से भी ये बात कही गई थी, हालांकि जो सुप्रीम लीडर है ईरान के वो जरूर मारे गए पहले ही दिन पहले ही हमले में, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रजीम चेंज को लेकर जो एक्सरसाइज की गई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जानकारी अभी नहीं है कि उनके बाद यानी कि खोमेनी के बाद कौन नया नेता बनेगा ईरान का, और जो सेकंड रंग है या जो दूसरे लेवल के जो लीडर्स है वहां पर उनके भी जो अलग अलग हमले हैं उनमें मौत हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो रजीम चेंज का मोटिव है आपको लगता है कहां तक वो पूरा होता दिख रहा है?
विशाल जी, मुझे लगता है कि वो जो मोटिव था रजीम चेंज का वो विफल हो चुका है। अगर हम देखें इनकी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी थी अमेरिका की और इसराइल की, वो ये था कि एक बार डिकैपिटेशन स्ट्राइक जो हुई है जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी और टॉप लीडरशिप IRGC की भी, डिफेंस मिनिस्टर और जो बड़े उनके लीडर्स हैं उनकी हत्या की गई है, उसके बाद एक तरह से जनता रिवोल्ट करेगी, एक तरह से पॉपुलर रिवोल्ट शुरू हो जाएगा क्योंकि ये एजम्पशन थी कि बड़ी अनपॉपुलर रिजीम है जो ईरान की है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी फेल होगी क्योंकि अभी कोई अंदेशा नहीं है कि इस तरह से कोई पॉपुलर रिवोल्ट खिलाफ हो, जो आपकी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, बल्कि हम उल्टा देख रहे हैं कि उसका एक दूसरा असर हो रहा है
जी।
वो ये है कि तमाम लोग इस वक्त उतरे हैं सड़कों पे, सिर्फ ईरान की नहीं, ईरान के शहरों की नहीं, लेकिन पूरे रीजन में हम देख रहे हैं जहां पर शिया डोमिनेटेड प्रोफाइल है, सोशल प्रोफाइल, या जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे इराक हुआ, बहरेन हुआ, और सबसे बड़ा यमन हुआ। यहां पर हम देख रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं और एक तरह से प्रो खामेनी जो है वो प्रोसेशंस बाहर आ रहे हैं और लाखों के लोग तादाद में लोग आ रहे हैं। ईरान के अंदर भी जो प्रो खामेनी सेंटिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि एक बड़ी अंडर एस्टिमेशन की गई थी इसराइल और अमेरिका से, क्योंकि एक तरह से खामेनाई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, वो एक रीजन के नेता थे, एक पूरे शिया वर्ल्ड के नेता थे, एक रिलीजियस लीडर थे। जिस तरह से एक तरह से कंपेरिजन करो, जिस तरह कैथोलिक वर्ल्ड के लिए पोप है, उस तरह शिया वर्ल्ड के लिए आयतुल्लाह खामेनी थे। तो उसका जो असर है बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है, लोग यूनाइट हो रहे हैं, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो पलटवार किया ईरान ने पूरे रीजन में, तो एक तरह से जो रेजिम चेंज का मुद्दा था, मुझे लगता है वो तो पूरी तरह से फेल हो चुका है
जी। और जो एलाइज हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से भी जो बयान हैं वो थोड़े से विरोधाभासी जरूर आ रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया कि वो या और उनका देश रेजिम चेंज यानी कि हवाई हमलों के साथ रेजिम चेंज करने में विश्वास नहीं रखता। खैर, जो अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रेटजी है और जो ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जनरल मैस्टन, उस पर आपने कहा कि किस तरह से जो अमेरिकी हमले हैं और जो इजरायली हमले हैं उससे ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, उनके जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको काफी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और ये दिख भी रहा है क्योंकि पहले दिन ईरान ने लगभग 300 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी, हमले किए, और चौथे दिन तक आते आते उनकी संख्या लगभग 50 तक ही सीमित रह गई। तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है ईरान की तरफ से कि अब पहला सैल्वो जिसे कहा जाता है वो थोड़ा सा बड़ा रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसमें कमी की जा रही है, थोड़ा सा एक्सपैंड किया जा रहा है, और क्योंकि ईरान न केवल जो इजरायली और अमेरिकी ठिकाने उन पर हमला, बल्कि अलग अलग लगभग 12 से 14 देश हैं पश्चिम एशिया में जहां पर उन्होंने हमले किए हैं।
ये स्ट्रेटजी दो प्रकार की हो सकती है या दो कारण की वजह से हो सकती है। पहला कारण तो ये है कि जो कंटिन्यूअस इनके ऊपर बॉम्बिंग पड़ रही है, आपने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने पिछले 3 दिन में बार बार बोला है कि हम बहुत बॉम्बिंग करेंगे, और अभी उनका टोटल फोकस है इनकी ये डिग्रेड करना, न्यूट्रलाइज करना, ये लॉन्चर्स हैं, ये जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स, इनको बर्बाद करने का वो सोचा है। अब ऑब्वियसली इसका फॉलोआउट ये है कि अगर ये बर्बाद हो रहे हैं तो उसकी तादाद कम हो रही है, और अगर तादाद कम हो रही है तो इनकी पावर कम हो रही है। तो अब ईरान के पास चारा दो है, एक है कि इसको कंजर्व करें, मतलब इनको तभी यूज करें जब बहुत जरूरत हो, क्योंकि अभी तक भी अगर आप देखें जितनी भी मिसाइल्स और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं उससे कोई खास प्रभाव नहीं हुआ है। देखिए, फौज में एक होता है फायर फॉर इफेक्ट, फायर फॉर इफेक्ट आपने उदाहरण पहले दिन ही देख लिया कि अमेरिका और इसराइल का जो हमला था उसमें टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो गई है, वो हो गई फायर फॉर इफेक्ट। अब यहाँ के केस में इन्होंने एक चीज तो अचीव की है कि खाड़ी देशों में इन्होंने खूब फायरिंग कर दी है, लेकिन डैमेज और कैजुअल्टीज कितनी हुई है। अभी तक की लड़ाई में सिर्फ 6 अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं। ये लड़ाई में वो बहुत प्रभाव देता है, खासकर यूएस जैसे देश में, क्योंकि जब वहां कैजुअल्टी ज्यादा होंगी, बॉडी बैग जाएंगे, तो वहां की जो जनता है अमेरिका की वो ट्रंप के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर बॉडी बैग्स देखते ही लोगों के सेंटिमेंट्स ऊपर हो जाते हैं। तो ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, होटल्स डैमेज हुए हैं, ऑयल रिफाइनरी पे हिट हुआ था, गैस पे भी उन्होंने कोशिश की, गैस स्टेशन पे, कतार वगैरह में, लेकिन वो सब बंद कर दिए गए हैं। अब इनके पास ऑप्शन एक ही है कि अपनी एनर्जी या रिसोर्सेज को कंजर्व करें और अप्रोप्रिएट टाइम पे इस्तेमाल करें, और क्या कर सकते हैं जो इनको करना चाहिए, या तो अमेरिकन शिप को किसी को डैमेज कर दें या सिंक कर दें तो वो तो वर्ल्ड की टॉप न्यूज हो जाएगी कि एक अमेरिकन शिप, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो रहा हो या फ्रिगेट हो या छोटी सी कोई भी शिप हो, वो एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी। तो एक तो वो कर सकते हैं, दूसरा अभी क्या है कि उनकी स्थिति थोड़ी खराब हो रही है, और ये भी देखना है कि ये कितना कंजर्व कर सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका को आज सबसे फायदा ये है कि इनका सैटेलाइट सिस्टम वर्ल्ड में नंबर 1 है और इनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी नंबर 1 है। तो कहने का मतलब है 24/7 रात हो या दिन हो या खराब मौसम हो, इनको हर लॉन्चर का, हर ड्रोन साइट्स का एक लोकेशन कांस्टेंट मिल रहा है जिसकी अब प्लॉटिंग कर रहे होंगे, एआई तरीके से भी हो रही होगी। अब सवाल उठता है कि उसको तुरंत डिस्ट्रॉय करना। ईरान को फायदा यह है कि वहां पहाड़ है, माउंटेनियस टेरेन है, वो फायर करके तुरंत छिप जाते होंगे बंकर्स में, इसमें जो टनल्स है उसमें घुस जाते होंगे या साइलोज में, लेकिन उसकी अभी मैपिंग हो रही है। और वो मैपिंग के साथ साथ आपने देखा है भारी तादाद में बॉम्बर्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं दोनों की कंट्रीज है, मिसाइल्स हैं, इनकी प्रिसाइज टारगेटिंग कर रहे हैं। दूसरा, हाँ, इनको एक और फायदा है कि ये जीपीएस एनेबल्ड सिस्टम्स हैं, तो जीपीएस सिस्टम्स में क्या है कि प्रिसाइज टारगेटिंग हो जाती है। तो ईरान को यहाँ थोड़ा नुकसान तो होता जाएगा, इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, तो हो सकता है वो अभी काफी दिन तक फायरिंग ना करें और अपनी रिजोर्ट्स को छिपा के रखें, और जब उन्हें लगा कि अमेरिका को अब लगने लगा है कि हाँ भाई इनके मिसाइल्स वगैरह हमने खत्म कर दिए, फिर वो चालू कर दें। तो ये स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ईरान के हित में है कि ये लड़ाई को लंबा चलाएं, जितना लंबा चलाएं इसमें इनका फायदा है, जितनी ये शॉर्ट वॉर हो जाएगी अमेरिका का फायदा है और पूरे यहाँ पर रीजन में स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो अभी ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति है और बड़ी अनसर्टेन है कि ये कैसे अनफोल्ड करता है। अभी दोनों साइड के बीच में एक ही चीज चल रही है, एक चाहता है कि उसकी मिसाइल और ड्रोन पोटेंशियल को हम नष्ट कर दें, दूसरा चाहता है कि फायर भी हम करते रहें और एट द सेम टाइम अपने रिसोर्स को और पावर को हम कंजर्व करें और सही टाइम पे इस्तेमाल करें। विशाल
जी, अतुल जी, एक पहलू और इसका है और वो पहलू है, क्योंकि आपने बात की खमेनी के समर्थन वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों में जो समर्थन मिल रहा है या ईरान को जो समर्थन मिला, और ईरान के कुछ प्रॉक्सीज भी हैं उस पर्टिकुलर रीजन में पश्चिम एशिया में, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्ला है, इनकी क्षमताओं को इसराइल ने काफी हद तक लगभग साल डेढ़ साल पहले कमजोर कर दिया था, खत्म ही कर दिया था लगभग, लेकिन एक बार फिर से लेबनान फ्रंट पर अभी इसराइल को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो क्या वो कुछ फैक्टर हो सकता है इस पूरे संकट में?
विशाल जी, मुझे नहीं लगता कि लेबनान अब एक पोटेंट लोकेशन है जहां से इसराइल के अगेंस्ट हमले किए जाएं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डिग्रेड हो चुका है पिछले युद्ध में ही, और उनकी जो हिजबुल्ला जो मेन फोर्स है वो उनके जो आइकॉनिक लीडर एक तरह से थे हसन नसरल्ला, उनकी हत्या कर दी गई है, और साथ साथ इतनी बमबारी की गई है खासकर के सदन बेरूत दाहिये करके एरिया है जहां पर हिजबुल्ला का स्ट्रांग होल्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि बियॉन्ड सिम्बॉलिक कुछ ज्यादा हिजबुल्ला कुछ कर सकता है। तो एक तरह से मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में हिजबुल्ला का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, डाइवर्शनरी रोल अभी तक है, लेकिन ज्यादा वो भी लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसराइल की जबरदस्त बमबारी चल रही है इस वक्त लेबनान के अंदर।
अतुल जी, अगर हम ईरान के एलाइज की प्रॉक्सीज की बात करें, वो है हुती रेबल्स जिनको हम कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही थी, और उसके अलावा अगर जो जहाजों की जो आवाजाही यानी कि जो सप्लाई चेन है उसको अगर सुरक्षित रखना है तो ना केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए बल्कि जो हुती रेबल्स हैं उनके ऊपर भी काबू रखना पड़ेगा इसराइल और अमेरिका को।
इसीलिए मैं उस पे हुतीस पे आ रहा था, क्योंकि अब दो चैनल्स की हम बात कर रहे हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि अभी तक ईरान जो है उसको पूरी तरह से ब्लॉक ना कर पाए, लेकिन उसमें ये जो मूवमेंट है शिप्स की उसको सीमित जरूर कर पाए, तो एक तो ये हॉर्मुज की बात है। दूसरी हम बात करें रेड सी, जो सुएज कैनाल से रूट निकल के आ रहा है, और वहां पर हुतीस ने पहले जब पिछला युद्ध चल रहा था तो हुतीज ने कोशिश की थी कि उसको एक तरह से वहां पर भी रुकावट पैदा की जाए, लेकिन क्योंकि हुतीज की क्षमता या कैपेबिलिटी भी डिग्रेड हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि बियॉन्ड ए पॉइंट हुतीज भी उस चैनल को, ये जो रेड सी वाला चैनल है, उसमें कुछ ज्यादा बाधा पहुंचा सके। लेकिन जो मूल बात है जो जनरल मेस्टन भी कह रहे थे वो ये है कि कितने समय तक ईरान इसको लंबा खींचे, क्योंकि दोनों तरफ एक तरह से गेम चल रही है। इस वक्त हम देखते हैं कि इस युद्ध को लेके डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी सिर्फ 20% रह गई है अमेरिका के अंदर, और जो मेगा क्राउड है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका तो पहले से दावा चल रहा है, तो कि आप चुनाव के लिए आप लड़ रहे थे तो आपने कहा था यू विल एंड ऑल वॉर्स, लेकिन आपने तो नई वॉर इंट्रोड्यूस कर दी है, ये हम सेनेट में भी देख रहे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी देख रहे हैं। तो एक तरह से अगर ये खिंचती और है तो इंटरनल प्रेशर ट्रंप के ऊपर और बनेगा, तो ईरान की मंशा यही होगी कि इसको एक्सटेंड किया जाए और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में खेला जाए अमेरिका की।
जनरल मेस्टन, एक और मुद्दा जिसका जिक्र आपने अपने पहले जवाब में किया था और वो है ईरान की जो परमाणु क्षमता है उसको लेकर, अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ है उनके महानिदेशक का बयान आया है कि ईरान द्वारा परमाणु परमाणु बम बनाने का कोई सबूत उनको अभी तक नहीं मिला है। तो यानी कि ईरान एक परमाणु शक्ति के तौर पर ना उभर पाए, ये इसराइल का स्टेटेड मोटिव है और उसका समर्थन अमेरिका की तरफ से भी उसको प्राप्त है। लेकिन इस पूरी लड़ाई के दौरान जो चल रही है, अगर ऐसे कोई सबूत नहीं मिल रहे, तो यानी कि जो बातचीत चल रही थी, जो नेगोशिएशंस चल रही थी, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि अगर कही जाए परमाणु जो शक्तियां हैं ईरान की, उनमें कोई खास बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल, उसमें कोई खास बदलाव इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि पहली बात, कोई इंटरनेशनली प्रूवन नहीं था कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तकरीबन वो नजदीक आ गए। कुछ रिपोर्ट्स थी, जैसे कल स्टीव विटकॉफ ने भी बोला एक हफ्ते में भी ये बना सकते थे। तो देखिए, एक हकीकत तो ये है कि 60% एनरिचमेंट तो इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर चुके थे, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए 90% चाहिए, तो 60% है। और नॉर्मल जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसके लिए 10% इज इनफ। तो ये जो 60% है, ऑब्वियसली हो सकता है, पॉसिबल टीएस का कोई सबूत नहीं है कि उस दिशा में जा रहे थे, और तकरीबन 470 केजी ये एनरिच्ड 60% यूरेनियम पड़ा हुआ था और इसको अच्छी तरह स्टोर करके रखा था। अब देखिए, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, क्योंकि कुछ चीजें तो किसी देश की कभी पता ही नहीं चल सकती, और खासकर न्यूक्लियर होता है वो बहुत ही टॉप सीक्रेट होता है। हो सकता है खोमेनी के आदेश में कुछ साइंटिस्ट और कुछ IRGC टॉप लीडरशिप ये इसका कोई बहुत गहरी टनल्स में, आपने तो देखा है इनकी नतांज में या इस्फान में इतने गहरे गहरे टनल्स हैं, वहां जाके कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, प्रोबेबली एनरिचमेंट का कुछ चल रहा होगा। अब कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है उसको तो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इवन IAEA के जो चीफ थे उनको भी हर जगह अलाउड नहीं था जाना, क्योंकि ये तो नेचुरल है, कोई कंट्री भी अपने देश में किसी को हर जगह घुसने नहीं देगा। तो वो भी एक शक की डायरेक्शन में जाता है, और हो सकता है कि ये कोई डर्टी बॉम्ब या कुछ बनाने की चेष्टा में थे। क्योंकि देखिए, एक चीज तो है, बाय चांस अगर ईरान के पास कल न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए तो इस रीजन में खतरा है, क्योंकि देखिए गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं वो ईरान के साथ अलाइंड है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए वो भी एक थ्रेट है। आपको पता है बहरीन को वो अपना एरिया मानते हैं, और UAE के साथ और कई देशों के साथ इनकी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, डोमिनेशन चाहते हैं। और ये देखिए, यहाँ तो सुन्नी पॉपुलेशन है, वहाँ शिया है, और ये बेसिकली फारसी हैं, तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी है। मुस्लिम जरूर हैं, बट एक रीजनल डोमिनेंस वो चाहते थे। और दूसरा, जो ईरान ने इतने प्रॉक्सीज प्रमोट किए हैं, खासकर आप देखिए, मैं तो बोलूंगा गल्फ कंट्रीज के बैकयार्ड में ये हूतीज को, यमन में, तो वो भी उनके लिए कांस्टेंट थ्रेट था। और आपको पता है 10 साल तक ये सऊदी अरेबिया, हूतीज और UAE ये चल रही थी इनकी टक्कर, और UAE ने बीच में भी अरामको के एक दा फायर किया था मिसाइल कुछ साल पहले, तो ये हूतीज भी थ्रेट है। तो ये पूरा जो इस मिडिल ईस्ट रीजन को देखा जाए तो दो पहलू से हम ले सकते हैं। एक तो फिलिस्तीन प्रॉब्लम है, अगर वो एड्रेस हो जाए तो भी शायद इश्यूज ठीक हो जाए। दूसरा है, जो ईरान भी चाहता है फिलिस्तीन प्रॉब्लम के अलावा जो रीजनल डोमिनेंस, हो सकता है इसने इतने इतने प्रॉक्सीज हर जगह लगा दिए थे तो एक रीजन में इनस्टेबिलिटी थी, ये गल्फ स्टेट्स के लिए एक परमानेंट थ्रेट था। अब इसराइल को ज्यादा थ्रेट मानते हैं या ईरान को थ्रेट मानते हैं, दोनों थ्रेट तो थे। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में जो अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे, और जो खासकर भारतीय प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी ने भी एक पहल की थी G20 में IMEC कॉरिडोर के लिए, तो ये तो एक तो बहुत अच्छी डायरेक्शन पे था, क्योंकि इसमें गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, इसराइल इन्वॉल्व हो गया, हाइफा पोर्ट हमको ही बनाना था, या मतलब उसको इम्प्रूव करना था इसी ट्रेड के लिए, और आगे फिर ये यूरोप तक जाना था, तो ये तो एक बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक था। तो जब सबको इफेक्ट कर रहा है तो जाहिर है इनकी पीस और प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट इसराइल और ये जितने गल्फ कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, इसकी और बढ़ती। लेकिन ईरान उसको शायद डाइजेस्ट नहीं कर सकता था। देखिए, फिर चीन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, चीन को इस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस रखने के लिए एक सबसे बड़ा होल्ड है ईरान, और वो चाह रहा था कि उसका होल्ड बने रहे। बीच में उसने सऊदी अरेबिया के साथ भी कोशिश की, इनकी आपस में बातचीत हुए, लेकिन वो प्रिंसिपली असंभव ही लगता है, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया एक पावरफुल देश है, वो भी चाहता है कि वो अरब वर्ल्ड में या इस इलाके में वो भी एक डोमिनेंस रखे, तो टर्की भी है, इस प्रकार एक राइवलरी है। तो मेरे को लगता है कि ये जो इश्यू है न्यूक्लियर वाला, ये एक लॉन्ग टर्म थ्रेट हो सकता था, और अभी आपने तो उसका ट्रेलर देख ही लिया है, कल न्यूक्लियर होते तो न्यूक्लियर भी लॉन्च हो जाते हैं, अभी तो मिसाइल्स और ड्रोन्स तो लॉन्च हो ही रहे हैं पूरे गल्फ कंट्रीज में। तो अब इनकी क्या है रिलायबिलिटी वेस्ट के ऊपर या अमेरिका के ऊपर और बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए खुद ये नहीं लड़ सकते थे, जैसे एक सिक्योरिटी गारंटी थी ये बेसिस, अब तो मेरे को लगता है ये इसमें और सिक्योरिटी गारंटी यही होगी कि शायद प्रेजेंस बढ़ जाए। कल अगर अमेरिका यहाँ होता ही नहीं तो आप देखिए इन देशों के ऊपर हूतीज और ये सारे मिलकर और डोमिनेंस कर देते।
जी जलमेस्टन, आपने चीन की बात की, मैं अतुल जी को यहां लाना चाहूंगा। अतुल जी, अगर दोनों ही तरफ से देखा जाए, यानी कि इस वक्त जो युद्ध चल रहा है वो ईरान बनाम इसराइल और अमेरिका चल रहा है, अब दोनों ही तरफ जो सपोर्ट या एलाइज की बात की जाए, चीन का कोई खुला समर्थन ईरान के लिए नहीं आया है अभी तक, हालांकि कुछ बयान जरूर आए। और उसी तरह अगर देखा जाए तो जो अमेरिका के नेटो एलाइज हैं उनमें भी एक सुर एक ताल नहीं दिखाई दे रही है। ब्रिटेन की तरफ से कोई और बयान आ रहा है, स्पेन ने अपने जो बेसिस हैं वो इस्तेमाल करने से मना कर दिया था अमेरिका को, तो ये क्या दर्शाता है?
ये देखिए, ये दर्शाता है कि एक डिवाइडेड वर्ल्ड है। एक दूसरी बात ये है कि अब हम बाइपोलर वर्ल्ड में नहीं है या यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं है, अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में है जिसमें कई सारे सेंटर्स ऑफ पावर आ गए और अमेरिका उनमें से सिर्फ एक सेंटर ऑफ पावर है, शायद सबसे पावरफुल उस पे है। तो इसलिए ये जो डिसोनेंस इंटरनेशनल सिस्टम में है वो हमें सामने नजर आ रही है। अगर हम भारत की तरफ से देखें तो भारत का आईएमएफ की बात की है जनरल मिस्टर ने, वो जरूर एक कॉरिडोर, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो एक बहुत ही अच्छा एक विकल्प है एक यूरोप को और मिडल ईस्ट को जोड़ने का। लेकिन साथ में भारत का एक चाबहार पोर्ट है और चाबहार पोर्ट से आगे जो रास्ता सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लिए वो ईरान के थ्रू है, और ईरान का चाबहार पोर्ट जो है वो काउंटर करता है ग्वादर पोर्ट को जो पाकिस्तान और चीन बना रहे हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि अगर हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है तो हमको सब जगह, चाहे इसराइल से रिलेशन हो, चाहे ये स्थिति आजकल ऐसी जटिल है, लेकिन हमारे रिलेशन ईरान से भी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहे हैं। तो एक तरह से ये बैलेंस्ड व्यूज तरीके से, क्योंकि वर्ल्ड इतनी टर्मोइल में और इतने सेंटर्स ऑफ पावर हैं कि हमें नेशनल इंटरेस्ट अपने गार्ड करने हैं, और मुझे ये लगता है कि इसमें एक तरफा होकर नहीं बट प्योर सिंपल कोल्ड ब्लडेड सेफ गार्ड एंड डिफेंस ऑफ आवर कोर नेशनल इंटरेस्ट, उसमें खाड़ी के देश भी आते हैं, उसमें इसराइल भी आते हैं।
इतनी सारी चर्चा हमने की इतने सारे पहलुओं पर, और आप दोनों ने कहा कि किस तरह से जो स्थिति है वो बड़ी ही इस वक्त जिसे कहा जाए बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है पश्चिम एशिया में, युद्ध लगातार चल रहा है। लेकिन अगर दोनों तरफ से देखा जाए, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप पर कुछ डोमेस्टिक प्रेशर है, आंतरिक जो उनकी पॉलिटिक्स है देश की उसका प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, उनके एलाइज भी शायद उस एक सुर में नहीं बोल रहे हैं जिस तरह का सुर जो है इससे पहले की जो युद्ध हुए उनमें देखने को मिला, नाटो बनाम जो कई और देशों के साथ युद्ध हुए, और ईरान की अगर बात करें तो उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है क्योंकि इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में इस युद्ध का क्या रुख हो सकता है? क्या अगर जरूरत पड़ी रजीम चेंज जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, तो क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड भी देखने को मिल सकते हैं इसराइल या अमेरिका की तरफ से या उनके सहयोगी देशों की तरफ से?
देखिए, मेरे को जो भविष्य लग रहा है, एक तो ये ऐसा लगता है कि आज जो एडमिरल कूपर हैं, इनकी जो ब्रीफिंग थी जो 4-स्टार जनरल के बराबर हैं और जो यूएस सेंटकॉम के कमांडर हैं, वो ब्रीफिंग बड़ी प्रेसाइज थी और कुछ चीजें जो थी उन्होंने ये बोला था कि हमने 17 इनकी शिप्स डुबो दी हैं और अभी हमने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और पर्शियन गल्फ में पूरा हमारा कंट्रोल है। वो मेरे को लगता है अगर एक 4-स्टार जनरल यूएस का बोल रहा है तो उसमें इतना झूठ तो वो नहीं बोल सकता है। और दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि अभी हम हेड ऑन हम ये टारगेटिंग कर रहे हैं, हमारा टोटल फोकस है मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मिसाइल ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना। अगर वो अचीव हो जाता है, उसमें समय लग सकता है, मुश्किल है वो समय डिफाइन करने को, जल्दी भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं कि 1 महीना भी है। लेकिन अगर वो अचीव हो जाता है, मैं आपको बोलूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये विन विन सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, गल्फ कंट्रीज हैं वो भी वो सराहना करेगी। पर ये प्रोलोंग नहीं होना चाहिए। अगर ये युद्ध या ये डोमिनेंस जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये अगर 1 हफ्ते के अंदर हो जाए, जो बहुत मुश्किल लगता है, अगर हो जाती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए तो वाह वाह सिचुएशन है। लेकिन अगर ये प्रोलोंग चलता है और चुटपुट ये फायर करते रहेंगे और इनको एंटेंगल कर दिया इस युद्ध में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए और फिर वहां की जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं में उनको प्रॉब्लम हो सकता है और उनका मागा बेस पे भी इफेक्ट हो सकता है। जहां तक अभी आपने बूट्स ऑन ग्राउंड का बोला है, देखिए, मैं जब अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल के लिए, मेरे को याद है वहां तालिबान जो अमेरिका के साथ लड़ रहा था उसमें सिर्फ 40,000 की नफरी थी तालिबान की, 20 साल तक उन्होंने इनको एंगेज करके रखा। अब यहाँ जो IRGC की नफरी है, टोटल IRGC की नफरी है तकरीबन 2 लाख, मतलब आपका उसमें 1.5 लाख तो है IRGC के ग्राउंड सोल्जर, जो मतलब बेसिकली सेना के तौर पे होगी, जबकि उनकी आर्मी एक अलग चीज है और IRGC और सेना के बीच में मतलब मतभेद है। ज्यादा पावर तो IRGC के पास है। अब आप सोचिए, अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आते हैं और इनके इतने सारे कार्डर्स हैं, फैले हुए हैं पूरे ईरान में, और ईरान इतनी बड़ी कंट्री है, तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो ये इनके लिए सुसाइडल हो जाएगा और बॉडी बैग्स इतने जाएंगे कि दूसरा लॉजिस्टिकली ये सस्टेन कैसे करेंगे। इनको एक पोर्ट चाहिए, पहले वहां पर कराची से पोर्ट से जाता था इनका सामान, बट अभी यहाँ तो इनको फिर बंदरबास चाहिए होगा या छाबर चाहिए, कुछ तो चाहिए, वो कैप्चर करने में इनको इतना टाइम लगेगा, और फिर तो ये इंसर्जेंसी मूवमेंट शुरू हो जाएगा जैसे अफगानिस्तान में था। तो मेरे को लगता नहीं है अमेरिकन बूट ऑन ग्राउंड करेंगे, बट एक चीज की हल्की सी संभावना दिखती है। देखिए, आज रेजिस्टेंस कहां से है ईरान के अंदर? एक जगह से है, वो जो कुर्दिस्तान का इलाका है नॉर्थ वेस्ट ईरान की तरफ, जो अजरबैजान के साथ पास में है और तुर्की और इराक के साथ है, वहां कुर्दिस्तान का भी इलाका है, और वहां पर ये डोमिनेशन है किनकी? कुर्द्स की। कुर्द्स बेसिकली सुन्नीज हैं, वो एंटी रिजीम है, कोई डाउट नहीं है। अभी वहां पर CIA मुसाद एजेंट्स एक्टिवेटेड हैं, वो चाहते हैं कि वहां से प्रोटेस्ट शुरू हुए। आपको याद होगा ये जो 2022 में ये लड़की मरी थी जिससे ये विमेन के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे हिजाब के, वो इंसिडेंट ही कर थी, जिसका नाम था मेरे ख्याल मेहसान अमीनी, वो कुर्दिश थी, वो कुर्द ओरिजिन की थी, वो उस दिन तेहरान में आई थी और उसको पकड़ लिया था और टॉर्चर करके मार दिया था, उसके बाद से एक वो मोटिवेशन हो गया था। तो एक तो वो सुन्नी डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, और वो कुर्दिस्तान एक जो कर्ज है, ये एक ऐसी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में जिनके पास आज तक एक होम नहीं है, पर ये चार कंट्रीज के अंदर इनका इलाका है, जिसमें सीरिया हो जाता है, इराक हो जाता है, ईरान हो जाता है और तुर्की हो जाता है, जिसमें सिर्फ इराक ने इनको ऑटोनोमी दे रखी है। तो
यानी कि जनरल वेस्टर्न, समय की थोड़ी सी कमी है लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि यानी कि आप कह रहे हैं कि इंटरनल रेबल जो है, रेबल ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से अगर कुछ कार्रवाई हो तो हो सकती है, अदरवाइज बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि ईरान और इसराइल की तरफ से या उनके सहयोगी देशों की तरफ से सैनिक जो है ग्राउंड पर यानी कि ईरान की जो सीमा है उसमें उतारने की संभावनाएं अभी तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। जनरल वेस्टर्न, एक आखिरी सवाल और काफी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस युद्ध को खत्म कैसे किया जा सकता है, यानी कि शांति की बातचीत पहल किस तरफ से होगी? भारत की तरफ से बार बार ऐसे मौकों पर कहा गया है कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, हमने बार बार कहा है कि शांति की पहल होनी चाहिए, बातचीत से सभी मुद्दों का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब आज की स्थिति में अगर देखें तो जो बड़ी ताकतें हैं विश्व में, ना चीन की तरफ से कोई पहल हुई है, ना ही रशिया की तरफ से कोई पहल हुई है, आपको लगता है कि कोई तीसरा पक्ष बहुत जल्द पहल कर सकता है दोनों ही इन पक्षों के लिए, ईरान की तरफ से या ईरान के लिए और अमेरिका और इसराइल के लिए भी, और अगर करते भी हैं तो क्या ये दोनों पक्ष इस वक्त या आने वाले कुछ दिनों में दोबारा जिसे कहा जाए डायलॉग के लिए या बातचीत के लिए राजी होंगे?
देखिए, जो फिलहाल की स्थिति है, पहली बात, भारत की तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, डायलॉग डिप्लोमेसी ई सोल्यूशन है, लेकिन जो आज की तारीख के हालात हैं, मेरे को लगता है दोनों साइड बिल्कुल अभी हार्डन्ड स्टैंड ले रखा है, बिल्कुल कट्टर हो रखे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक वो कोई नहीं होगा तो सब लड़ाई का आउटकम वेट कर रहे हैं कि उनके मिसाइल्स खत्म होए या उनके मिसाइल्स चलते रहें और ये साइड हारे। तो ये सिचुएशन है, दोनों बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और इसमें क्या है कि पूरे रीजन में प्रभाव हो रहा है। मेरे को लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो आज ईरान से बात कर सकता है, इसराइल से बात कर सकता है, या गल्फ कंट्री से बात कर सकता है, या ट्रंप से बात कर सकता है, एकमात्र देश है। ना ये चीन कर सकता है और ना ये रशिया कर सकता है। तो मेरे को लगता है, ये अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, हो सकता है कि भारत ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज के साथ बातचीत करे, इधर ईरान की लीडरशिप से भी बात करे, उधर बैकडोर डिप्लोमेसी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ करे, और मेरे ख्याल भारत की जो स्किल्स हैं, आपने G20 में इतना अच्छा किया है, हमने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ली है, तो मेरे को लगता है पॉसिबिलिटी है।
जी बिल्कुल, जनरल मेस्टन आपने सही कहा, उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और उम्मीद इसी बात की है कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो, पश्चिम एशिया में जो संकट की स्थिति है वो खत्म हो, और एक बार फिर से जो दुनिया है वो अपने नॉर्मल जिसे कहा जाए मुकाम पर चले, शांति हर जगह स्थापित होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए जनरल मेस्टन, और अतुल अनेजा जी आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद। थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और सुरक्षा परिदृश्य पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय मेस्टन और सामरिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
चर्चा का विषय है।